오늘의 파스타 바가 약간 걸리니까
Sorry.
내가 알겠다니? 번호를 밀 파스트에 인제스.
예.
번호를 밀 파스트에 네팔 갔다니?
아차아차.
응. 아미 예.
꼬이 받으니?
네팔피노, 예.
그리 파스트가 굉장히 또 파스트장이네. 네팔 파스트장이네. 파스트호가 또 파스트장. 라스트 미니클라에. 네팔 라스트 미니클라에, 파스트 미니클라에. 라스트 미니클라에. Last, so fast, fast, so fast.
बोलते हैं ना यहाँ पे दादी जी आने वाली है यहाँ पे काठमांडू में तो सेवा कैसे करें जैसे एडवांस का आप देना चाहें तो कैसे कर सकते हैं
वहाँ उनके प्रोग्राम में अगर हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो ये तो गलत बात है पर्चे बांटते हैं तो गलत बात है दी जाती है भाषण करती है और हम खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो तो तैयार नहीं है बीच में डिस्टर्बेंस को सुनने के लिए दुनिया के कोई भी धर्मगुरु ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है कि उनकी सभा में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दे परमिशन दें तो वो दूसरी बात है लेकिन कोई परमिशन तो देते नहीं सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए जाए एडवांस के और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में छपा के अब जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ जो बस स्टैंड वगैरह हैं खास खास जगह हैं वहाँ चिपका दिए जाए
कौन चिपका रहे बाबा मुझे डर लगता
राख में चिपकाए जाते हैं पोस्टर कोई दिन में थोड़ी चिपकाए जाते हैं
मुझे डर लगता है तो शेर बाप का शेर बच्चा कहाँ से हो गए
हो जाएगा शेर
हुजूम के सामने हम एक दो
हुजूम के सामने कहाँ चोर होते हैं रात में चोरी करते हैं दिन में चोरी
हम चोर हो गए बाबा चोर हो गए
हम काहे के चोर हैं हम तो नई दुनिया के चोर हैं
सुधन
सुधन नेपाली में सुधन
नहीं होने चाहिए उन्होंने टाइम जाने दे
बाबा भक्ति मार्ग में चार महीने देवताओं को सोया हुआ दिखाते हैं इसका क्या मतलब है
टोटल महीने कितने होते हैं
बारह
महीने होते हैं एक साल में बारह महीने होते हैं और ऋतु कितनी होती है
तीन
ऋतुआ होती है ना तीन ऋतुओं में कौन कौन सी ऋतुएं हैं गर्मी बरसात और सर्दी वर्ष की शुरुआत कौन से महीने से होती है गर्मियों से होती है या सर्दियों से होती है या बरसात से होती है
गर्मियों
से पहले गर्मी आती है फिर गर्मी के बाद फिर बरसात आती है फिर
सर्दी
फिर ठंडक आ जाती है तो भक्ति मार्ग की गर्मी में से हम निकलते हैं तो सतयुगी और त्रेतायुगी शूटिंग जो है सतयुगी जो सतयुग है वो शूटिंग पीरियड है सन 36 से लेकर के और सन 76 तक उसमें तो देवताएं देव आत्माएं प्रत्यक्ष होती नहीं देव आत्माओं को जो मुखिया है नारायण, वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो 1/3 पीरियड 40 साल निकाल दो, 40 साल भी नहीं कहे, उसमें भी 10 साल शुरुआत की तो संगम युग में संगम युग हो गया, माने 33 साल बचे। ब्रह्मा बाबा जो जीवित रहे हैं वो तो कितने साल तक जीवित रहे,
33 साल
जीवित रहे, तो 33 साल जो है वो देवता बनने की बात नहीं थी। फिर उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद वही बीज रूप आत्मा में प्रवेश हो जाता है ज्ञान चंद्रमा के रूप में। बाप दादा बच्चे में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां से ये शुरुआत होती है। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा सोए हुए थे सनार्थ साहब, जब तक जिंदा रहे थे कि जगते थे, उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चला ही नहीं। जब मंथन नहीं चला तो कहेंगे सोया हुआ या जागता हुआ, सोया हुआ था। इसलिए कहते हैं देवताएं इतना सोते हैं इतना जगते हैं। मुख्य देवात्मा कौन है?
दादा लेखराज
जी मुख्य देवात्मा है। इसकी निशानी क्या है कि वो मुख्य देवात्मा है?
धारणा शक्ति।
हाँ, वो जो भी वाणी चलाते हैं वो धारणा की वाणी चलाते हैं। शिव बाबा धारणा की वाणी नहीं चलाते, क्योंकि शिव बाबा देवता तो है नहीं। देवता होगा तो देवता ही वाणी चलाएगा, धारणा की वाणी चलाएगा। ज्ञान सागर होगा तो ज्ञान की वाणी चलाएगा।
बाबा आज की मुरली में ज्ञान का घमंड का क्या मतलब है?
ज्ञान एक से आता है, तो एक बाप का बच्चा घमंड होने की बात अच्छी है खराब है?
अच्छी है। वो स्थूल घमंड, स्थूल घमंड जैसे अहंकार।
स्थूल घमंड कहाँ है, ये तो बेहद का घमंड हो गया। स्थूल घमंड थोड़े ही है, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। और जैसे कहते हैं आत्मा अभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? अभिमान तो खराब चीज है, बहुत अभिमान करते हैं। तुमको अभिमान है क्या? लेकिन स्वाभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? आत्मा का अभिमान अच्छा है या खराब है? आत्मा का अभिमान तो अच्छा है, उस आधार पर कहा।
दादा ये रूप और बसंत कहते हैं दादा,
श्याम और सुंदर क्या है? जैसे श्याम सुंदर की बात बताई,
अलग अलग एक ही
नहीं, जैसे श्याम सुंदर की बात बताई उसमें अंतर सिर्फ है कि एक ही श्याम है एक ही सुंदर है। और यहाँ रूप और बसंत जो कहा जाता है उसमें एक है रूप और एक है बसंत।
और कौन है दादा? ये
लक्ष्मी नारायण, नारायण है रूप, क्योंकि शिव की याद में रहता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट याद में और कोई रहता नहीं। शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो रूप है। और नारायण दिव्य गुणों का आधार है, इसलिए वो रूप बसंत है। बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ खुशबुएं ही खुशबू होती है, तो दिव्य गुणों की खुशबुएं ज्यादा नारायण में देखने में आवेंगी या ज्यादा लक्ष्मी में देखने में आवेंगी? धारणा शक्ति कौन है?
लक्ष्मी।
बाबा मीरा को किससे तैले किया जाएगा उसकी भक्ति कृष्ण के लिए?
मीरा की भक्ति तो सर्वोपरि भक्ति है, वो तो फर्स्ट क्लास भक्ति है। उसको अगर टैली भी करें तो कोई पुरुष भक्त से टैली किया जा सकता है? पुरुषों में मुख्य भक्त है नारद, नारद है भक्त शिरोमणि वो पुरुषों में, और स्त्रियों में भक्त शिरोमणि मीरा।
नारद का पाठ अभी इसमें डिस्ट्रिक्ट में एडवांस है अभी
है?
ناردا پاٹ کون بجا رہے ہیں گی ڈسٹرکٹ میں یعنی اخبار ایڈوانس میں؟
نمبر وار نارد ہیں،
نمبر دار
ایک نارد ہے کیا؟ نار د، نار مانے گیان، د مانے دینے والا، جیسے کہتے ہیں نارائن، نار آئن، دو شبدوں کو ملائیں گے تو بنے گا نارائن، نار مانے گیان جل، آئن مانے گھر، مانے گیان جل ہی جس کا گھر ہے، نیپال میں تو خاص یادگار بنی ہوئی ہے،
بوڑھا
نیلکنٹھ، ہاں بوڑھا نیلکنٹھ، تو جیسے یادگار بنی ہوئی ہے نارائن، تو وہ تو ہو گیا سمپن روپ، لیکن جو ادھورا روپ ہے نارائن کا وہی نارد ہے، نار مانے گیان جل، دا مانے دینے والا، دوسروں کو تو ساری دنیا میں گیان جل دیتا پھرتا ہے، لیکن خود اتنا دھارن نہیں ہے، اس میں نمبر وار ہیں سنگمکی نارائن، پھر اس کے بعد ستیو کا فرسٹ نارائن، پھر اس کے بعد نمبر وار ستیو کے اور نارائن، تو جو ستیو کا آٹھواں نارائن ہے وہ پرتیکش دکھائی پڑے گا نارد، اور جیسے جیسے اوپر چڑھتے چلے جاؤ ویسے ویسے وہ گپت نارائن ہے۔
نیپال میں ہی بوڑھا نیلکنٹھ کا بننا، پشوپتی ناتھ کا بننا اور مہاکالی کا،
نئی دنیا کا پالن کرنے والا کون سا ہے، کون سا نارائن ہے؟
نیا نیپال،
ارے نئی دنیا کی پالن کرنے والا پرانا نارائن ہے یا نیا نارائن ہے؟ تو پرانا ہوگا تو بوڑھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
بوڑھا نیلکنٹھ،
بوڑھا مانے انوبھوی،
تو نیلکنٹھ،
نیلکنٹھ کہا جاتا ہے شنکر کو، شنکر اور نارائن ایک ہی ویکتتو کے نام ہے کہ الگ الگ نام ہے؟ نیکسٹ ٹو گاڈ از شنکر، نیکسٹ ٹو گاڈ از نارائن، نیکسٹ ٹو گاڈ از کرشن، نیکسٹ ٹو گاڈ از پرجاپتا، تو یہ چاروں شبد ایک ہی ہوئے یا الگ الگ ہوئے؟ ایک ہی ہوئے۔ اب اس کو نارائن کو بھی سرپوں کے بالکل نزدیک دکھا دیا ہے، ان کے سنسرگ سمپرک کے سمبندھ میں جٹا ہوا ہے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ایسے ہی شنکر جی کو بھی کمر میں، بغلوں میں، گلے میں، سر کے اوپر، چاروں طرف سنسرگ سمپرک سمبندھ کس کا جٹا ہوا ہے؟ سرپوں کا، کالے سرپوں کا، سرپ من کامی کرودھی لوبھی موہی اہنکاری، جیسے کہاوت ہے بھکتی مارگ میں، چندن وش ویاپت نہیں لپٹے رہتے بھجنگ، چندن کا جو وکش ہے اتنا سگندھ دینے والا سمپورن لکڑی ہے کہ اس میں چاروں طرف سے سرپ لپٹے رہتے ہیں، جن میں بسی ہی بس بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چندن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پھر بھی سگندھ دیتا ہے۔ اس کے لیے بولا ہوا ہے، سو بگلوں کے بیچ میں ایک ہنس اپنی مستی میں بنا رہے، تو وہ یادگار ہے بوڑھے
نیلکنٹھ کے۔
بابا بھکتی مارگ میں رامائن پڑھنے سے پہلے ہنومان چالیسا کیوں پڑھتے ہیں؟
رام کا جو جیون چرتر ہے وہ پہلے پرتیکش ہوتا ہے، یہ کرشن والی آتما پہلی پرتیکش ہوتی ہے سنگم میں، کرشن والی آتما پہلے، بعد میں سنچتر کے بعد پھر رام والی آتما کی پرتیکشتا ہوتی ہے، تو رام والا کام بعد میں ہوا ہے اور کرشن والی آتما کا کام پہلے ہوا ہے، اس لیے پہلے ہنومان چالیسا، ہنومان کا پارٹ کس کا ہے؟ اس سمے جو رام والی آتما ہے اس کو انسپریٹ کرنے کی سیوا کون سی آتما کر رہی ہے؟
کرشن کی آتما۔
تین پارٹیاں ہیں ایڈوانس پارٹی میں، ایک انسپریٹنگ پارٹی، ایک پلاننگ پارٹی اور ایک پریکٹیکل پارٹی، تو برہما بابا کون سی پارٹی کی شرومنی ہے؟ انسپریٹنگ پارٹی کی شرومنی ہے، انسپریٹنگ پارٹی کا جو شروع میں ہے اب بل نمبر سیوا کرنے والا، تو وہ ہے کس کی سیوا کرتا ہے؟ رام لکشمن کی ہی سیوا کرے گا نا، وہ ساکار میں ہے، पवन सुत कहा जाता है, इसके बच्चे हवा के बच्चे। हवा का बच्चा हवाई होगा कि स्थूल होगा? हवाई होगा। कहते अपने कंधों पर बैठा के हवा में उड़ा उड़ा के ले जाते थे। क्या मतलब हुआ? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं प्रवेश करके ऊंचे उनको ऊंचा उठाती है, उड़ाती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर धारणों में धारियों में होती है या स्थूल शरीर धारण करने वालों में होती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में ज्यादा ताकत होती है। राम लक्ष्मण कौन हो? कोई दूसरे दूसरे राम लक्ष्मण होते हैं, वही राम लक्ष्मण, वही हनुमान।
पूरी रामायण में सुंदरकांड का इतना महत्व क्यों है?
ज्यादा सुंदर है ना, सुंदरता वो सबको ही पसंद करता है। ऐसा कोई है जो सुंदरता को पसंद नहीं करता हो? इस कलयुग की दुनिया में तो सुंदरता को ही ज्यादा पसंद करते हैं। शिव के हैं ही तीन रूप, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम कहाँ, कौन से युग में होता है सत्यम? सत्ययुग में सत्यम 100% सत्य वहां होता है। फिर शिवम कल्याणकारी। दो हैं, एक सत्ययुग का अधिष्ठाता और एक है त्रेता का अधिष्ठाता। त्रेता का ज्ञान किसका है? राम का। और सत्यु का गायन किसका है? कृष्ण का। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सत्यु में राज्य किसका होता है? कृष्ण का, नारायण का, वासुदेव का, उनका राज्य होता है। तो सत्यम है सत्ययुग में और राम वाली आत्मा है त्रेता में। क्यों? वो शिवम कैसे? हाँ, क्योंकि कल्याण जितना कृष्ण की आत्मा नहीं कर पाती है उससे जास्ती कल्याण सारी दुनिया का राम वाली आत्मा करती है। दो ऋषि गाए गए हैं, एक वशिष्ठ ऋषि और उनके मुकाबले में दूसरे विश्वामित्र। उनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा? सारे विश्व का कल्याण करने वाले विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने सारे विश्व का कल्याण किया। और वशिष्ठ ऋषि को विश्वामित्र की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ज्यादा पावरफुल कौन थे, वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र?
विश्वामित्र
है,
वशिष्ठ
थे।
सुनने लेकिन किया काम ज्यादा विश्वामित्र।
फिर हराया किसने किसको? पहले वशिष्ठ ने हराया, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बल से वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया। इसका मतलब तपस्या से ज्यादा पावरफुल कोई और तरीका नहीं होता। तपस्या है आत्मिक स्थिति, अपने को देह को भूलना और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, यही तपस्या है।
विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गया ना, जब वो नहीं कर पाया।
क्या?
जब वो वध नहीं कर पाया।
अरे वहाँ बात हो रही है, विश्वामित्र ने गऊ के लिए लड़ाई लड़ी, ये गऊ हमें चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। तो विश्वामित्र अहंकार में आ गए, उन्होंने अपने शस्त्र फिर छोड़ दिए। उन्होंने शस्त्रों का मुकाबला उन्होंने अपने पवित्रता के दंड से किया। वशिष्ठ ने पवित्रता के दंड से जब सारा मुकाबला कर लिया, उनके कोई शस्त्र काम नहीं कर पाए, तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे तो सारे शस्त्र इसने धराशाही कर दिए, ये ज्ञान के शस्त्र बेकार है। तब उन्होंने तपस्या की और तपस्या से जो वशिष्ठ ऋषि के पास ब्रह्मत्व की पावर थी, वो ब्रह्मत्व की पावर उन्होंने धारण कर ली। वो पावर धारण करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र तो थे नहीं। जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण से देवता बनते हैं और देवताएं देवताओं को सपोर्ट करते हैं कि असुरों को सपोर्ट करते हैं? वो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करते हैं। और शंकर जी या राम वो सारे विश्व को सपोर्ट करने वाले, सारे विश्व का भला करने वाले। जो पतित हैं, जो गिरे हुए हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। और जो उठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, सारी दुनिया उनका बच्चा है। इसलिए सत्यम शिवम और सुंदरम कलयुगम, शिव के ये तीन रूप हैं, सत्यम कृष्ण के रूप में, शिवम राम वाली आत्मा के रूप में, और सुंदरम शिव का जो सुंदर स्वरूप है वो द्वापर और कलयुग की शूटिंग में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है।
बाबा शंकर को मस्तक गम न क्यों बैठा है?
क्योंकि जब तक कोई बच्चा बहुत प्यारा जब तक न बने तब तक माँ बाप उसको अपने सर पर नहीं चढ़ाते। जो बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, बहुत अच्छा शोभनीक होता है, बहुत अच्छा गुण वाला, बहुत अच्छी बात करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, प्यार में आके अपने सर पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भगवान किन बच्चों को प्यार करते हैं? जो सबसे उन बच्चे होते हैं उनको प्यार करते हैं। उत्तर भारत वालों की सर्विस अभी तक भी एडवांस वालों में कोई नहीं कर सका, कोई कर सका? दक्षिण भारत वालों की तो सर्विस की, पूर्वी भारत वालों की सर्विस की, लेकिन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश वासियों की, राजस्थानियों की, मध्य प्रदेश वालों की कोई सर्विस अभी तक कर सका? नहीं कर सका। गंगा निकलती है तो उत्तर प्रदेश वालों की सर्विस हो जाएगी। जो उत्तर प्रदेश जगेगा तो सारे सन्यासी जग जाएंगे, क्योंकि सन्यासी कहाँ बैठते हैं? गंगा जी। और मुरली में भी बोला है बाबा कि जब सन्यासी निकलेंगे तो दो बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा जी किनारे की सन्यासी जब निकलेंगे तो गंगा के जोर से निकलेंगे या अपने आप निकलेंगे? हैं? कब निकलेंगे? गंगा निकलेगी, गंगा सेवा करेगी तो सन्यासी भी निकलेंगे, तो पवित्रता के जोर से फिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसीलिए गंगा को जो जगत पिता है वो कहाँ बैठा लेता है? सर के ऊपर। जो अष्टदेव हैं, आठ रत्न, उनको भी ऊपर बैठाता है, लेकिन उनके बीच में कहाँ बैठा देता है? किसको? गंगा को सर बैठाता है। भले गंगा अष्टदेवों में नहीं है क्या, फिर भी ज्यादा सेवा करने के कारण गंगा को ऊपर बैठाया जाता है। लेकिन वही गंगा जब बाप के संबंध संपर्क में है, बाप से कनेक्शन जुटा हुआ है तो पतित पावनी। जब तक गंगा का कनेक्शन बाप से जुटा हुआ नहीं है तो नदी नहीं
नाला, नाला।
राम तेरी गंगा मैली।
गंगा कब निकलेगी बाबा?
जब निकलेगी तब तब सारा सबका कल्याण हो जाएगा।
गंगा को लाने वाले तो भागीरथ
हैं।
गंगा को लाने वाले तो
भाग्यशाली रथ है। कौन
भाग्यशाली? बाबा
भागीरथ ने आदमी भी निकाला होगा एडवांस, जब ज्ञान शुरू होगा हुआ होगा तो भागीरथ ने उसको ज्ञान दिया होगा, सतो प्रधान स्टेज का ज्ञान जरूर गंगा ने उठाया होगा।
तो
लेकिन उसके संस्कार हैं सन्यासी के, तो उठाया तो सत्व प्रधान ज्ञान, लेकिन सन्यास धर्म की तरफ चली गई। तो जब सन्यास हो गया तो बिछड़ गई, फिर संबंध जुटेगा तो फिर काम करके दिखाई। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर की जटाओं में सिर्फ पानी की धारा नहीं निकालते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पानी की धारा। कोई माता का चेहरा भी नहीं दिखाया, कोई जानवर का चेहरा भी नहीं दिखाया, किसका? कन्या का चेहरा दिखाया। माने कोई कन्या है जो एडवांस में भी मान्य है और बेसिक नॉलेज वालों के बीच में भी मान्य है। उस कन्या ने एडवांस ज्ञान सत्व प्रधान स्टेज में लिया है, लंबे समय तक गहराई से लिया है। फिर जैसे सन्यासी होते हैं अहंकारी होते हैं, तो अहंकार में आकर के टूट पड़े।
میں سر یو پی میں سیوا تو اسے ہو ہی رہی ہے, جب باپ کا ہی یو پی سے ہوا ہے سب کچھ یو پی میں ہو ہی رہے گی.
فرق آباد میں کتنی سیوا ہو رہی ہے؟ کیونکہ گنگا نہیں نکلی ابھی تو بتایا, گنگا نکلے گی تو اتر بھارت میں سیوا ہوگی. گنگا کا چھیتر ہے, مگر مچھوں کا دیش جگے گا کب؟ مگر مچھ رہتے کہاں ہیں؟ گنگا کے
اپنے گھر کا ڈاکٹر کا ویلو نہیں ہوتا نا.
ہاں جی ہاں جی,
ساری یادگار ہو یو پی میں, جیسے متھرا بھی, ایودھیا بھی, کاشی بھی, کرکشیتر.
بابا گڑے جی کا ناک لمبی کا کیا حساب؟
ناک اونچی ہونا, ناک لمبی ہونا اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ خراب بات ہے, ناک اونچی ہونا اچھی بات ہے. تو گنیش جی اتنے گیانی تھے کیونکہ پرم پتا پرماتما اور جگت ماتا کا سب سے زیادہ پیار کس کو ملا؟ جس کو سب سے جاستی پیار ملتا ہے اس کے دماغ چڑھ جاتے ہیں, ناک اونچی ہو جاتی ہے.
بابا
پوجا ہوتی ہے دیہ کی یا پوجا ہوتی ہے آتما کی؟ آتما کی پوجا ہوتی ہے. آتما کو یاد کیا جاتا ہے اور پوجا ہوتی ہے دیہ کی. تو جو پوجا ہے وہ سب سے پہلے دیہ پہلے آگے آ جاتی.
بابا بہت ہی مارگ میں کوئی لاتا برش کو پوجا کروں میں
بولتے ہیں گنیش کی پوجا کرتے ہیں
سب سے شیو کو مانتے یاد کروں میں
ابھی بتایا کہ پوجا کے لیے چاہیے شریر, پوجا کے لیے چاہیے استھول, اور یاد کے لیے چاہیے بندو آتما. بھکتی مارگ میں ہوتی ہے پوجا اور گیان مارگ میں ہوتی ہے یاد. تو بھکتی مارگ میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں ساکار روپ چاہیے. تو دے ابھیمان کون سے جانور سب سے جاستی ہوتا ہے؟ ہاتھی میں سب سے جاستی دے ابھیمان ہوتا ہے, تو ہاتھی پہلے چاہیے. اس لیے بھکتی مارگ والے گنیش کو پہلے آگے رکھ دیتے ہیں. باپ کو رکھنے چاہیے آگے کہ بچے کو آگے رکھنا چاہیے؟
نیپال میں گنیش کی پوجا بہت ہے, نیپال میں بہت ہے.
ہاں نیپال میں گنیش کی زیادہ پوجا ہوتی ہے, لیکن نیپال میں زیادہ مانیتا کس کی ہے؟
شیو کی.
شیو کی.
ہاں
بابا اتنے بڑے ہاتھی کا اور واہن چوہا.
ہاں تو چوہا وہاں کے بڑے یا چھوٹے کی بات تھوڑی ہے, کام کرنے والے کی بات ہے. چوہا کیا کرتا ہے؟ اندر ہی اندر زمین کو سارا کھود کے کھوکھلا کر دیتا ہے. ہم مکان میں رہنے والے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کھوکھلے ہو گئے. ایسے ہی برہما کمار کماریوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ نیچے اندر اندر کھوکھلا کر دیا. ایڈوانس والے چوہا نہیں ہو گئے, جس کی سواری ہے وہ چوہا ہے. اندر اندر گپت پرسارتھ کرتا ہے نا چوہا.
تو بابا ابھی پرم پتا پرماتما شیو کو ہی سمجھتا ہے, تب تو ابھی کرشنا اور رام نام ستیہ ہے بولتے ہیں, اس کو بھی سب بھول جانا ہے نا بابا. ابھی خالی ایک دم ایک ہی گرو
ستیہ جو ہے
بابا, ایک ہی ٹیچر.
سمجھ لیا, ستیہ جو ہے وہ صرف آتما کو ستیہ کہیں, یا آتما جب اس سرشٹی پر آ کر کے ساکار کے دوارا کاریہ کرے تب ستیہ یوگ آئے گا. آتما ہے شیو, وہ سدیو آتما ہے, کبھی بھی دیہ نہیں ہے, لیکن وہ ستیہ شیو جب تک ساکار میں پرویش نہ کرے تب تک ستیہ یوگ بنے گا کیا؟ اس لیے دونوں ہی ستیہ ہیں. وہ نراکار جیوتی وہ بھی ستیہ ہے, لیکن وہ سدا شیو ہے, سدیو ستیہ ہے, اور جس میں پرویش کرتا ہے وہ ستیہ بھی ہے. ستیہ کا بھی بیج ہے, ستیوں کا بھی بیج ہے, دیوتاؤں کا بھی بیج ہے, और फिर जब तमो प्रधान बनता है तो झूठ का भी बीज बोई है। इसलिए मुरली ने बोला है कि पहले नंबर का ब्राह्मण सो पहले नंबर का देवता सो पहले नंबर का क्षत्रिय सो पहले नंबर का वैश्य सो पहले नंबर का शूद्र। हर बात में पहला नंबर। इसलिए हनुमान चालीसा में क्या लिख दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप फैला हुआ है। सतयुग में भी ऊंचते ऊंच तुम, त्रेता में भी ऊंचते ऊंच तुम, द्वापर में भी ऊंचते ऊंच तुम, और कलयुग में भी ऊंचते ऊंच तुम। कौन? हनुमान के लिए बोला ना, और हनुमान तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो कृष्ण वाली आत्मा है राम के व्यक्तित्व में प्रवेश करती है वो फिर हनुमान का पाठ बजाती है।
बाबा
बक्तावर कौन है? बक्तावर माने जो सफल करे वक्त को, वक्त को श्रेष्ठ बनाए। वर माने श्रेष्ठ, वक्त माने समय, वक्तावर माने श्रेष्ठ बनाने वाला। नीच को नहीं कहा जाता वक्तावर, श्रेष्ठ कार्य करने वाले को वक्तावर कहा जाता है। गुप्त रह करके सारा शासन किया ईश्वर माना, अभी बताया श्रेष्ठ शासन करने वाला, लेकिन गुप्त रह करके अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। यज्ञ के आदि में भी रानियों को भगाया, माखन चुराया, ये है सारी प्रजापिता की कहानी, है प्रजापिता की कहानी, लेकिन अपने को छुपा दिया और बच्चे को आगे कर दिया, तो सारी महिमा किसकी हो गई? दादा लेखराज ब्रह्मा की हो गई।
तो गुप्तेश्वर हुआ ना
दादा लेखराज?
है
नहीं,
दादा लेखराज कहाँ हुआ, वो तो प्रत्यक्ष हो गया सबके सामने। अभी गीता का भगवान अभी कौन माना जा रहा है? गीता का भगवान साकार में अभी ब्रह्मा को मानिए, किसको मानती है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उसने गुप्त किया क्या?
नहीं,
वो तो प्रत्यक्ष हो गया। नाम भी किसका रख दिया? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में प्रजापिता का नाम तो हटा दिया, किसको प्रत्यक्ष कर दिया? ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कर दिया ना, तो अपने को तो प्रत्यक्ष कर दिया, और बाप को प्रजापिता का नाम गुप्त कर दिया, तो उसे गुप्तेश्वर कहेंगे। अभी दादा लेखराज ब्रह्मा को गुप्तेश्वर कहेंगे? नहीं कहेंगे, उन्होंने तो अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया। गुप्तेश्वर कौन हुआ? जिसने ये तो है, लेकिन बाबा शब्द भी जुड़ा हुआ है। बाबा कहते ही साकार निराकार का मेल, माने यज्ञ के आदि में कोई और व्यक्तित्व था जिसके द्वारा ये सारा कार्य रचा गया, वो ही गुप्तेश्वर हुआ। जो आदि में है वो ही अंत में भी प्रत्यक्ष होगा, अभी भी गुप्त है। अभी अगर गुप्त न होता तो घड़ी घड़ी अभी संशय आता, ये क्यों आता? अभी घड़ी घड़ी संशय आता ही नहीं बाप के पार्ट के ऊपर, अरे ये भगवान है कि शैतान है, है कि नहीं है?
भक्ति मार्ग में मंदिर भी बता, भक्ति मार्ग में मंदिर भी बनाता है गुप्तेश्वर की, एक यादगार
मंदिर मंदिर गुप्तेश्वर
मंदिर नेपाल में छ। ब्रह्मा ने 12 गुरु क्यों किए, 11 10 क्यों नहीं किए?
ब्रह्मा बाबा जो है उन्होंने यज्ञ के आदि से लेकर के शूटिंग पीरियड में कितने बच्चों की बात मानी? सबकी बात मानते रहे या एक के एक को पहचान करके एक की बात मानते रहे? चंद्रवंशी बच्चों की भी बात मानी, इस्लाम वंशी बच्चे आए उनकी भी बात मानी, कुमार का दादी की भी बात मानी, विश्वेश्वर भाव की भी बात मानी, रमेश भाई आए उनकी भी बात मान ली, मुंबई के क्रिश्चियंस की भी बात मानी, बौद्धियों की भी बात मान ली। क्या ऐसे नहीं कि मनोहरी दीदी की बात नहीं मानते थे, उनकी भी बात मानी, क्रिश्चियंस की भी बात मानी, बौद्धियों की भी बात मानी, सन्यासियों की भी बात मानी। सिख धर्म का जो गुरु हुआ, मुखिया हुआ, जो ब्रह्मा कुमारों में सिख धर्म के मुखिया मुखिया बच्चे थे, उनकी भी बात मानी। माने जो जो धर्म वाले आते गए सब के पांव पड़ते गए, तो भक्त का पार्ट हो गया। तो भक्ति तो जहां सब जगह भटकती है, और ज्ञानी राम वाली आत्मा है ज्ञानी, वो कहीं भटकने की दरकार है ही नहीं। तो इसलिए बारह भक्त यहाँ शूटिंग पीरियड में भी किए, तो वहां भक्ति मार्ग में भी बारह गुरु होते हैं।
बाबा काल भैरव क्यों नाम
रखा?
काल
भैरव
क्यों नाम रखा?
नेपाल
मा काल
भैरव मंदिर। क्यों काल भैरव? भैरव कहते हैं भयंकर, काल भैरव माने काल कहते हैं समय को, समय बड़ा प्रबल है कहते हैं ना, समय सबसे जास्ती प्रबल कौन है? समय। तो समय कौन है? उसको काल कहो, ड्रामा कहो, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं माने भगवान, और भगवान से भी ज्यादा पावरफुल कौन हो गया?
ड्रामा।
काल, काल माने समय, वही काल भैरव है जिसको महाकाल कहा जाता है, महाकाल का रूप है शंकर का,
महाकाली
स्वरूप, महाकाल और महाकाली।
राम को वनवास क्यों जाना पड़ेगा बाबा?
राम को वनवास क्यों मिला? सुष्माता का क्वेश्चन।
राम की आत्मा ने 84 जन्म लिए या नहीं लिए? चौरासी जन्म लिए ना, और 84 जन्म लिए तो उनमें सबसे बड़ा से बड़ा ज्यादा से ज्यादा राजा ही किसने की दुनिया में? राम राजा। राम वाली आत्मा जितना राजा ही करती है, इतनी राजा ही और दुनिया में कोई नहीं करता। तो राम वाली आत्मा जब राजा बनेगी द्वापर कलयुग में, बड़े बड़े राजाओं के बीच में उनका नाम होगा, तो राजा ज्यादा पाप करते कि नहीं है? कोई के ऊपर थोड़ी टेढ़ी नजर हो गई, निकलो हमारे राज्य में से बाहर। राजा अहंकार में आते थे कि नहीं है? तप कर राज, राज कर नरक, तो पाप कर बहुत करते थे। प्रभुता पाही काही मदनाही, जिसको प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो उसको बहुत क्या आता है? अहंकार बहुत आता है। और जब राजा अहंकार में आते थे तो किसी को भी कोई भी दंड दे देते। तो राम का राज्य तो अच्छा ही होता है, लेकिन अहंकार में आकर अगर किसी को दंड दे दिया तो बेचारे को कांटों के जंगल में भटकना पड़ेगा कि नहीं? भटकना पड़ेगा ना, इसलिए उनको कांटों के जंगल में भटकना पड़ता है। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, और राम को ही कांटों के जंगल में नहीं भटकना पड़ता है। जितने ही राम के फॉलोअर्स हैं, राम संप्रदाय, सबको नंबर वार भटकना पड़ता है। तुमको धक्का मिला कि नहीं? धक्का मिला ना, तो कभी उनको कभी राजा ही की होगी पिछले जन्म में, उनको कान पकड़ के बाहर किया होगा अपने राजा ही में से, तब तो तुमको धक्का मिला। कैसे ही धक्का मिल गया? ये अंतर है कि तुमने अपनी इतनी बड़ी राजाई में से उनको बाहर निकाल दिया खदेड़ के, उन्होंने अपने सेंटर की चार दीवारी में से निकाल के बाहर कर दिया, हिसाब पूरा हो गया। और एक बात, तुमको जब निकाला गया था, नहीं तुमने जब उनको निकाला था तो भगवान उनका सहयोगी नहीं था,
नहीं था
हाँ, और तुमको जब निकाला गया तो
भगवान,
तो भगवान तुम्हारा सहयोगी। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है तुमको।
शरीर द्वारा नै सत्कर्म र कुकर्म हुन्छ, अनि त्यो आत्माले भोग्छ वा शरीरले भोग्छ? आत्मा सबै जान्छ कि शरीरले नै त्यो
आत्मा सुख और दुःख भोग्ती है, लेकिन भूत प्रेतों की आत्मा सुख दुःख भोग्ती है, दुख देती भी है, सुख लेती है या नहीं?
सुख तो नहीं लेती।
नहीं नहीं, सुख लेती भी है, दुख देती भी है, लेकिन उसके पाप कर्म
नष्ट नहीं
नहीं बनते। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म बनते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा की सोल है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बाप दादा बच्चों से सेवा कराते हैं, तो सेवा का फल विशेष किसको मिलता है? देहधारी को मिलता है या आत्मा को मिलता है? देहधारी को मिलता है। ऐसे यहाँ भी
बाबा शिवलिंग के ऊपर वो फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना?
क्या?
शिवलिंग के ऊपर कभी पांच कभी सात फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना
सर पर?
सर तो वो क्या विकारी हो गया वो? तो फिर
पहले समझना है कि शिवलिंग का क्या है, कौन है, कौन है
शिवलिंग? तो
शिव कौन है और शिवलिंग कौन है? शिव और शिवलिंग में अंतर है या नहीं है?
अंतर है।
शिव है बिंदी का नाम, शिवलिंग जो बनाते हैं उसमें बिंदु रखते हैं, शिवलिंग जो सोमनाथ मंदिर में बनाया उसमें हीरे का सितारा रखा, तो सितारा क्या है और वो लिंग क्या है, अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? नहीं, अंतर यह है कि जो सितारा है वो शिव की यादगार है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो बिंदी बदल करके इतना बड़ा लिंग हो जाती है, लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ के आधार पर ऐसी स्टेज बना लेता है परमानेंट कि वो लिंग रूप बन जाता है, वो शरीरधारी ऐसा शरीरधारी बन जाता है जिसको अपने आंख नाक कान इंद्रियों की जैसे स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए जैसे कि कान होते हुए भी दुनिया की ग्लानि सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखें होते हुए भी दुष्ट बच्चों के दुष्ट कर्मों को जैसे देखते हुए भी नहीं देखता, ऐसी उसकी सब कर्म इंद्रियां का स्वरूप बन जाता है। तो लिंग है प्रजापिता के साकार स्वरूप की निशानी और बिंदु है निशानी शिव की निशानी। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ?
ऊपर है सर, मुझे फन मुझे ये जाना
है। नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर लिंग के ऊपर जो फन है वो कोई दूसरे पांच विकारी हैं, जो रावण के पांच मुख दिखाए जाते हैं वो पांच मुख हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पांच विकार अलग हैं और पांच तत्व हैं रावण के दूसरे पांच मुख, जिन्हें स्त्री मुख कहा जाता है, जड़त्व जड़ तत्व, वो है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो पृथ्वी माता ये कोई आत्मा रही होगी ना, वायु देवता ये कोई आत्मा रही होगी ना, अग्नि देवता कोई आत्मा रही होगी ना, तो ये पांच विकारी हैं, पांच विकारी ब्रह्मावत रावण के प्रतिरूप हैं। ये भी एक स्लोगन हो गया। क्या? जिनके चित्र होते हैं वो कोई चरित्रधारी होते हैं या नहीं होते? तो रावण का भी चित्र है, तो चरित्र खेलने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो वो पांच विकारी जो ब्रह्मा वत्स हैं वो रक्षक भी बन जाते हैं। किसके? शिवलिंग। वो ही सर्प के रूप में दिखाए गए हैं, जो शेष सैया दिखाई गई।
उसमें पंचामृत चढ़ाते हैं ना,
उसका मतलब
पंचामृत
चढ़ाते हैं ना? किसमें?
गाय
का
दूध।
ये भी पांच अमृत डाले जाते हैं, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का घी ये डालते हैं ना, गाय का दही, ये सब अमृत ही है। गाय कौन है? कन्या माता ही गाय है। गऊ के मुख से ज्ञान अमृत पंचामृत का काम करेगा या पुरुषों के मुख से जो ज्ञान सुनाया जाएगा उससे सदगति होगी? क्यों कन्या तो अपना नाम पहले ले लिया, माताओं को छोड़ दिया है? कन्याएं माताएं दोनों ही गऊए हैं। कन्याएं भी गऊए हैं और माताएं भी गऊए हैं। गऊओं के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलेगा उस ज्ञान अमृत से गंगा बहती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया, गऊ मुख से गंगा निकली।
बालाजी माँ गौ को मुख से पानी उतारा
है। जो ये गंगा जी जहाँ से उतरती हुई दिखाई गई है ना, हाँ वहाँ गौ मुख दिखाया गया है पहाड़ के ऊपर। और गौ मुख से पानी निकलता है, वो पानी नीचे आकर के फिर गंगा बन जाता है।
बाबा कलयुग ने केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरे पारा।
भक्ति मार्ग में नाम की महिमा है, लेकिन भक्त बिचारे जानते नहीं है नाम का आधार क्या है। नाम क्यों होता है किसी का बालक? कोई भी व्यक्ति का नाम बालक क्यों हो जाता है?
काम से आधार,
जरूर उसने कोई काम किया है। इस बात पर भक्त लोग विचार नहीं करते है, काम की बात कि किसने कितना बड़ा काम किया है, उस बड़े काम के आधार पर उसका इतना बड़ा नाम भक्ति मार्ग में बाला हो जाता है। तो भक्त लोग उसे भी यही कहते हैं, हाँ नाम लेते रहो, नाम लो नाम लो, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती है। नाम अपने आप नहीं हो जाता है, नाम काम के आधार पर होता है। तो काम करना अच्छा या नाम लेना नाम जपना अच्छा? काम करना अच्छा, बातें कम तब काम ज्यादा। तो अभी ये संगम युग की बात है, संगम युग में जो कुछ भी होता है वो सब प्रैक्टिकल होता है, और भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं और बतबड़ बहुत ज्यादा होता है। तो भक्ति मार्ग में है नाम और ज्ञान मार्ग में है काम। काम ज्यादा प्यारा या चाम ज्यादा प्यारा या नाम ज्यादा प्यारा? ना नाम ज्यादा प्यारा ना चाम ज्यादा प्यारा, काम करके जो दिखाए सो ज्यादा प्यारा।
शिवलिंग
में
तो उसमें रखते
हैं
ना बाबा,
जल धारा में। हाँ जो काम करके दिखाया होगा सो ही दिखाया। ऐसा काम कोई मनुष्य कर सकता है कि रहे कीचड़ के अंदर, कीचड़ की दुनिया में ही जगह पड़ा रहे और मन बुद्धि आत्मा से उपराम रहे? ऐसा काम कोई मनुष्य करके दिखा सकता है? मनुष्य की तो बुद्धि तो और उसमें लिपट जाएगी, संघ का रंग लग जाएगा, चाहे वो इब्राहिम हो चाहे बुद्ध हो चाहे क्राइस्ट हो चाहे कोई भी बड़े से बड़े महात्मा हुए हो, अगर गृहस्थी के अंदर रहेंगे तो गिरिहस्थी बन जाएंगे। और शंकर जी ऐसे बढ़िया गृहस्थी है तो उनका चित्र देखो कैसा दिखाया गया, उसी में रहे पड़े हैं। क्या पार्वती का स्त्री का जो रूप दिखाया गया है स्त्री चोला, उसी में रहे पड़े हैं, 24 घंटे वहीं रहे पड़े हैं। लेकिन फिर उनकी पूजा किस आधार पर होती है? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। किस आधार की प्योरिटी? ब्रह्म कुमारियां क्या समझती है तो पतित है। अरे पतित नहीं है, मन बुद्धि से उपराम है, इंद्रियां भले हैं दिखाई पड़ रही है। जैसे कोणार्क मंदिर में देवताओं के चित्र कैसे हैं, गंदे गंदे चित्र दिखाए हैं, फिर गवर्नमेंट में ताकत है उन चित्रों को बंद कर सके? इतने अश्लील जो चित्र दिखाए हैं देवताओं के, गवर्नमेंट भी ये ताकत उन चित्रों को निकाल के बाहर करे? जरूर कोई पावर है। क्या पावर है? वो पुरुषार्थी जीवन के चरित्र है, उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? कि कीचड़ में रह करके अपनी मन बुद्धि को उपराम बनाया है, लेकिन नंबर वार उपराम बने। इसलिए एक ही स्वरूप की पूजा होती है और देवताओं की सारी इंद्रियों की पूजा होती है, महिमा होती है। मुख कमल, नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल पूजा होती है ना देवताओं की, लेकिन शिव की सिर्फ लिंग की ही पूजा जो मनुष्य कर ही नहीं सकता और इंद्रियों को उपराम बना सकता है, लेकिन लिंग जब कनेक्शन में आता है तो बिना एक्साइटमेंट में आए मनुष्य रह नहीं सकता। तो वो पका वो पार्ट जो है वो शिव ने बजाया है, इसलिए शंकर को दिखाते हैं विष पिया। विष कहा जाता है बेविचार को। तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती एक है कि सब है? सब पार्वतियां। क्यों? क्योंकि वो सबके संसर्ग संपर्क में आते हुए भी संघ के रंग से परे रहते हैं।
बाबा फिर तुम लोग सब पार्वतियां हैं क्या? सीता है और द्रौपदी है बोलते थे,
ठीक है।
तुम लोग राधे कभी भी नहीं बोला?
राधे तो सिर्फ एक को ही प्यार करने वाली होती है। क्या एकलव्य तो सिर्फ एक ही होता है और राधे भी सिर्फ एक ही होती है, वो अनेक नहीं हो सकती। राधा, रा माने राम, धा माने धरी रहे बुद्धि, जिसकी जिसकी बुद्धि सिर्फ किसमें धरी रही? राम में धरी रही, भगवान में धरी रही, और कहीं भी उसकी बुद्धि जाए नहीं सकती। सब गोपियों ने रोना चिल्लाना पीटना शुरू कर दिया, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण कंस के दरबार में जा रहे हैं, अब ये लौटेंगे नहीं, अब तो वहां राजा ही के भांति बन के रह जाएंगे। सब रोने लगी और राधा ने क्या कहा? अरे चाहे जहां जाने दो, जहां भी पहुंचेंगे वो कल्याण करेंगे सृष्टि का, उनके कल्याण करने का हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। तो मन बुद्धि से वो भगवान में धरी हुई थी या साकार से स्नेह था उसका? अभी भी प्रैक्टिकल जीवन में जो राधा का पार्ट बजाने वाली है, वो देह के साथ चिपक के रहना उसको अच्छा लगता है या मन बुद्धि से रमी हुई है? और जगदम्बा, जगदम्बा देह के साथ लगातार रही। तो बाबा ने मुरली में बोल दिया कि मेरे साथ रहने वाले प्रैक्टिकल जीवन में साकार शरीर के साथ, वो मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो दूर रहने वाली है उसने पहचान, लेकिन वो एक ही निकलती है। कोई दूसरा कहे कि हम भी ऐसा पार्ट बजा लेंगे, असंभव। तो एकलव्य भी एक ही होता है और राधा भी एक ही होती है। और नेपाल में प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया निकालते हैं।
मच्छिंद्र नाथ का भी चर्चा नेपाल में चलता है।
मत्स्येंद्र, मत्स्य, मत्स्य माने मछली, और उसका इंद्र, इंद्र माने राजा। भगवान ने मछली का अवतार लिया ना, मछली का मत्स्यावतार। तो मछली कौन है? मछली थोड़े, ये तो मगरमच्छ है। उत्तमो प्रधान बनता है तो मगरमच्छ है। मछली कौन है? मगरमच्छ तो सबको निगल जाता है, सारी मछलियों को। मछली थोड़े ही मगरमच्छ को निगल जाती है। हाँ, मत्स्यावतार, मछली का अवतार लिया। उस मछली की कथा ये है कि ऋषि जी महाराज स्नान करने गए तो कमंडल में उन्होंने जल भरा, उसमें एक मछली आ गई। जब तक घर आए तब तक देखा तो कमंडल में मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से निकलना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने तोड़ करके उस मछली को घड़े में डाल दिया, बड़े घड़े में। वो थोड़े दिन के अंदर, दो चार दिन के अंदर वो घड़ा भी भर गया। उन्होंने घड़ा फोड़ा और मछली को निकाल करके एक बड़े टब में डाल दिया। दो एक दिन में वो टब भी सारा भर गया, बड़ी हो गई। फिर उसमें से निकाला और एक तालाब जैसा बना दिया, उसमें डाल दिया। वो उसमें बहुत बड़ी हो गई, तालाब में नहीं समाई। फिर उसमें से निकाला, नदी में डाल दिया। जिस नदी में डाला, नदी का पानी हो गया। वहां से भी निकाला, सागर में डाल
दिया।
अरे कोई ने पूरी बात तो बजाने
बाबा
बस,
चलो हम बंद कर लेते
हैं। हर सब पूजा होती है नेपाल में।
अच्छा, अगली बार कर लेंगे।
नहीं बाबा,
इस प्रसंग को पूरा,
वो देर हो जाएगी।
नहीं बाबा, बात सुना दो। मच्छिंद्रनाथ हर सब पूजा होती है नेपाल में।
टिकट मिट की एगार हजार मछलियों मछलियों बुद्धि उनका कहना मछलियों में बुद्धि क्यों लगाते हैं
नहीं नहीं मच्छिंद्रनाथ की पूजा हर साल नेपाल में होती है
भगवान बुद्धि लगाओ ना
नहीं आखिर क्या रहस्य क्या है हर साल पूजा होती है नेपाल
में बाबा
बताओ ये कुछ दूसरी बात
कुमारी की पूजा होती बाबा कुमारी पूजी जाती
कुमारी धेरै पूजी जाती यो भोग
माने मच्छेंद्र वाली बात न बताए अच्छा वोटिंग डालो क्यों अच्छा मच्छेंद्रनाथ की बात पूरी कर दे
फर्स्ट कम फर्स्ट
सो मछली का अवतार कौन है वो मछली कौन है जो बड़ी होती गई बड़ी होती गई सागर में भी
लास्ट सागर में जाके
सागर में इतना रूप है सागर तो सबसे बड़ा है उसमें जाकर के वो समा गई तो इसका मतलब ये है कि वो जगदम्बा का ही रूप है जो दीदी दादी दादियां इतना बड़े दुनिया की पालना नहीं कर सकती है जितने बड़े ब्राह्मण परिवार की अभी पालना होने वाली है उस बड़े ब्राह्मण परिवार में बेसिक वाले भी समा जाएंगे बेसिक की सारी दुनिया समा जाएगी एडवांस की भी सारी दुनिया उस ब्राह्मण परिवार में समा जाएगी और बाहरी दुनिया के जो ब्राह्मण निकलेंगे और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले वो भी सब उसमें समा जाएंगे जो भी 9 लाख ब्राह्मण तैयार होंगे उन सब की पालना कौन करेगी
जगदम्बा
करेगी इतनी बड़ी हो जाएगी लेकिन उसका रूप लगातार बढ़ता ही चला जाएगा आखिरी में कहाँ समा जाएगी
सागर
में उसकी कोई यादगार बनाई है चार चित्रों में क्या
पानी मंदिर
डूबी जा दिखाई है कि नहीं वही जगदम्बा इतना बड़ा रूप धारण करके सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करने के बावजूद भी अंत में जब भगवान का रूप प्रत्यक्ष होगा तो वो उस सागर में डूबो दी चलो भाई
पूरा नहीं है बाबा
क्या नहीं हुआ पूरा
इंद्र को भी बात किया
अरे उसका उसका राजा कौन है सागर ही तो मत्स्य का इंद्र हुआ इंद्र माने राजा मत्स्य माने मछली मछली का राजा कौन हुआ अरे जिस सागर में समा गई वही तो मच्छेंद्रनाथ हो गया अभी नहीं समझ में
आया
कुछ अपने आप समझ लिया अगर
बाबा की यादगार हो गए मच्छेंद्रनाथ जगदम्बा तो मच्छेंद्रनाथ चले गए तो यादगार
जगत की माता पूरी विश्व की माता
एक बात बताओ उस पार्टी का नाम ही है माओवादी 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 इसका अर्थ क्या हुआ ओ अम्मा वादी इनका तो प्रभाव इतना बढ़ेगा जितना मत्स्य का बढ़ गया इतना जगदम्बा का प्रभाव दुनिया में बढ़ता है इतना प्रभाव माओवादियों का बढ़ेगा सिर्फ नेपाल की ही बात नहीं है इंडिया में भी छा जाएंगे फैल जाएंगे
इंडिया का इंडिया का राज भी ले लेंगे बाबा इंडिया का राज ले लेंगे इंडिया का राज भी ले लेंगे
क्या
माओवादी तो
ले नहीं लिया अभी
इंडिया में
तो वही है इंडिया में
यहाँ तो ले लिए इंडिया में ले लेंगे
अरे जगदम्बा जो है वो सारे विश्व के ऊपर राज नहीं करेगी राज करेगा खालसा वो खालसा कौन है सिख धर्मों में मानी जाती है तो जरूर सिख धर्म से निकली होगी पंजाब के खून से कौन निकली अव्यक्तवाणी में भी बोला है ब्यासी त्रासी ने जो अव्यक्तवाणी बोली है उसमें भी बोला है पंजाब का खून कन्यादान में सबसे आगे गया कैसे ब्यासी त्रासी में ही गया उससे पहले नहीं गया चंद्रमणि दादी पहले नहीं सरेंडर हुई थी कन्यादान पहले चंद्रमणि दादी का हुआ या ब्यासी त्रासी में हुआ व्यासी राशि में जरूर वो कन्या निकली। कौन? एडवांस पार्टी की पहली पहली कन्या जिसने आगे कदम बढ़ा दिया, समर्पित होने, जिसके पीछे पीछे अभी 500-700 कन्याएं अब सरेंडर हुई बैठी। बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा के रहते रहते 300-400 ही सरेंडर हुई थी, और ये तो संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाएगी। कायन है, उठा लिया, क्या उठा लिया? गौवर्धन पहाड़। गौएं इतनी बढ़ी, वर्धन माने बढ़ी, गौएं इतनी बढ़ी कि 16108 का पहाड़ बन गया। वो उस उंगली के आधार पर उठाया गया, इन उंगलियों के आधार पर नहीं उठाया गया, जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे कमजोर। रुद्रमाला में सबसे छोटा मड़का कौन सा है, पहला या लास्ट का? लास्ट का मड़का जो पहला है, वो नहीं। लास्ट का मड़का जो छमुनी छोटी उंगली है, उसके आधार पर वो गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, उसकी पालना की।
बाबा कहाँ रहे
गुप्त? हाथ में भी गुप्त था, लास्ट में फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो डूबी जा कैसे होगी? बाप का बच्चा जो है वो नंबरवार होते हैं कि सब होते हैं? आठ होते हैं बाप के बच्चे जो सजा नहीं खाते, या सारी दुनिया बाप के बच्चे होते हैं?
आठ ही होंगे बाबा।
अरे नई दुनिया शुरुआत कितने से होगी? ये सजा खाने वाले भी उसमें घुसर देंगे। नई दुनिया में सजा खाने वाले घुसरेंगे कि नहीं घुसरेंगे? डालेंगे? नहीं डालना चाहिए।
ये हम
पूरा परिवार निकला हो उस घर में रखना ज्यादा अच्छा है। एक ही माता निकली है तो घर के दूसरे परिवार के सदस्य अगर सहयोगी है तो रख सकते हैं, लेकिन सहयोगी नहीं है, एक दो सदस्य ज्यादा विरोधी है तो वितंडावाद भी पैदा हो सकता है, सर्विस की जगह डिस सर्विस हो जाएगी।